ला रही होंगी अगर ये वीगो में बैठी हो ना और कोई पास ऐसा लग रहा है वीगो अकेली चल रही है
नीचे ये अपनी अभी अपने अपने नीचे ना कुशन रख लेंगे जब ब्रेक लगानी होगी तो नीचे हो जाती है जब ऊपर देखना होता है ऊपर हो जाएगी
क्योंकि इससे ज्यादा बेहतर है कि वो पीछे बैठ जाए वीगो के और रिमोट कंट्रोल ले लें ठीक है जनाब तो आप
आज का प्रोग्राम आमिर आप लोगों का भी बहुत कमाल का है जैसे अभी आमिर ने कहा कि अब से आधे घंटे के बाद हमारे साथ जस्टिस हिंदुस्तान से जस्टिस मरकंडे होंगे और ये इन्होंने रीयूनिफिकेशन का एक प्रोग्राम शुरू किया मैं वहां पे एक पैगाम जरूर देना चाहती हूं कि यकीनन वी ऑल हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर और ये बिल्कुल इसी तरह से कि अगर एक माँ के बेटे हैं और अब अपने अपनी जगह पे अपनी अपनी इंडिपेंडेंस है बट वी गॉट टू वर्क टूगेदर आप अलग अलग भी हैं मगर एक मुट्ठी बन के हम चलें तो अब ये पांचों उंगलियों को यूं मैं जोड़ के चलाऊंगी तो फिर तो म्यूटेशन हो जाएगी और कोई और स्पीशी का हाथ बनेगा मगर अगर पांचों उंगलियां इकट्ठी होने के बाद किसी चीज को होल्ड करती हैं तो वर्क बेटर अगर हम सब कॉन्टिनेंट खत्ते की बात करते हैं तो वहां हर मुल्क अपनी आइडेंटिटी कायम रखते हुए और एक दूसरे की आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करते हुए इस लिहाज से मुझे उनकी बात अच्छी लगी कि इफ वी कैन वर्क टुगेदर बाय रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स आइडेंटिटी एंड वर्किंग टुगेदर फॉर वन कॉज डेफिनेटली कैन चेंज द फेट ऑफ दिस जो एशियन मार्केट है उसकी किस्मत को बदल सकता है एक किस तरफ लेके जाना टॉप ऑफ टावर की तरफ लेके जाना चाहते मगर टॉप ऑफ टावर से पहले मैं भी चांदनी विक्टोरिया का पैगाम दे दूं चांदनी विक्टोरिया पे लाडी साहब आज से 28-29 साल तकरीबन 3 decades हो गई इनको ही हैड वन बैंक्वेट हॉल ऑन ये स्टील्स पे इनका बैंक्वेट हॉल हुआ करता होता था वहां से फिर इन्होंने चांदनी हॉल्स का सिलसिला शुरू किया चांदनी विक्टोरिया चांदनी हॉल्स में बेशुमार
चांदनी विक्टोरिया है चांदनी हॉल्स है कैलेडन कंट्री क्लब है इनका चांदनी कैटरिंग
नहीं नहीं चांदनी विक्टोरिया तो अब सबसे बड़ा बनाया है ना उसके अलावा कैलेडन कंट्री क्लब जो है ये गोल्फ कोर्स के साथ है
आउटडोर
है मगर इन्होंने और भी मार्कम में भी इनका चांदनी बैंक्वेट हॉल है हमारा क्राइस्टर ड्राइव पे इनका चांदनी बैंक्वेट हॉल है बल्कि वहां पे 2 चांदनी हॉल्स है एक क्राइस्टर पे स्टील क्वीन के साउथ में और एक क्वीन के नॉर्थ में मगर ऑन टॉप ऑफ दैट आप इनकी प्राइसेस देखिए इनकी वेबसाइट है www.chandanihalls.ca आइए साहब टॉप ऑफ टावर विल कम बैक स्टे ट्यून्ड प्लीज
द व्यूज एक्सप्रेस्ड ऑन द प्रोसीडिंग प्रोग्राम मे नॉट नेसेसरली बी दोज ऑफ द ओनर और मैनेजमेंट ऑफ WTOR रेडियो स्टेशन
कैनेडा डे का जश्न मनाओ ब्रैम्पटन दे विच अते एक वड्डे इनफ्लेटिव जोन विच करो उछल कुद अते एंजॉय करो फैमिली फ्रेंडली एक्टिविटी ते फ्री कॉन्सर्ट होस्टेड बाय जेसी जॉन अते इत्थे आ रहे ने पंजाबी हिप हॉप आर्टिस्ट इक्की अते इंटरनेशनल श्रीलंकन रैपर MIA आखिर विच एंजॉय करो रात नूं एक वड्डा फायरवर्क जो कि टिम होटन द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा वधेरे जानकारी लई अज ही विजिट करो brampton.ca/CanadaDay
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक यू थ्रू आउट ऑन्टेरियो नो अपॉइंटमेंट नीडेड ड्राइव थ्रू फैसिलिटी वन स्टॉप शॉप अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी क्विक ट्रक यू 519-622-0660 quicktruckcube.com
अल हुदा इंस्टीट्यूट कनाडा पेश करते हैं वेस्टर्न कनाडा टूर 2024 विद डॉक्टर फरहत हाशमी एंड डॉक्टर इदरीस जुबैर ये टूर 29th ऑफ जून सैटरडे के दिन कैलगरी से शुरू होगा और 14 जुलाई संडे के दिन सरे वैंकूवर पर खत्म होगा इस टूर की मुकम्मल मालूमात के लिए कॉल 647-388-4595
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है
क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेक एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773 ऑल स्टेट के साथ अब महफूज हाथों में है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
अपनी कम्युनिटी दा सब तो बड़ा बढ़िया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर बढ़िया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल ले नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747471।
सुनो सुनो सुनो, करा दियो मालको, अगर तुसी ब्रैम्पटन दे वार्ड 1, 3, 4, 5 या 7 दे विच रहंदे हो और तुहाडे कोल 104 रेंटल यूनिट ने, ते फेर तुहानू अपने कार दा लाइसेंस लेना पेगा। एक कदम तुहाडी सुरक्षा और क्वालिटी हाउसिंग वास्ते चक्या जा रहा है। तमाम तरह दे मालिक, अगर तुसी अपने रेजिडेंशियल लाइसेंस वास्ते 3 जून तक अप्लाई करदे हो, ते तुहानू तुहाडी कंप्लीट फी उत्ते छूट भी मिलेगी और तुहानू फी एग्जम्पशन वास्ते कंसीडर भी कीता जा सकता है। तमाम समझदार कार वालेओ, ए तुहाडा आखिरी चांस है। ज्यादा जानकारी वास्ते विजिट करो brampton.ca/rrl।
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر 6478724900।
First mortgage, second mortgage, मुश्किल कर देता है। बाकी बातें एक तरफ, आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस का हल है शिराज शफीक, जिनके पास है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्राइवेट फंड्स। लास्ट मिनट क्लोजिंग हो या डिफिकल्टीज, सभी के लिए शिराज शफीक 416-502-8000, लाइसेंस नंबर 10845, इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड।
ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कढ़ाही, शिनवारी गोट कढ़ाही, निहारी, हलीम, पाए, बिरयानी, सीख कबाब, चिकन टिक्का, शवरमा, पिज्जा और मजेदार लाहौरी छोले, पालक पनीर और बहुत सी वेजिटेरियन ऑप्शंस। ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, वही देसी अंदाज और वही देसी जायका। 1310 दंदा स्ट्रीट ईस्ट, मिसिसागा, यूनिट 3। ऑर्डर नाउ, कॉल 416-526-6800।
दांतों का कोई भी मसला हो या करानी हो डेंटल क्लीनिंग, डॉक्टर फयाज एंड एसोसिएट्स आपकी पहली चॉइस। Paradontics, orthodontics, dental implants, cosmetic dentistry and much more. Warm and friendly atmosphere, जहां आप अपनी जबान में अपनी तकलीफ बयान कर सकते हैं। आपके पास डेंटल इंश्योरेंस है या नहीं, कोई मसला नहीं। स्कारब्रो में एक और मिसिसागा की दो लोकेशंस पर आपको सर्व करते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए अभी कॉल कीजिए 9052325678 मिसिसागा, 4167579999 स्कारब्रो।
भाई खवातीन को तो जेवरात बहुत अच्छे लगते हैं। चूड़ियाँ ले लो, कड़े ले लो, चेन्स ले लो, स्टोन ज्वेलरीज, रूबी ज्वेलर्स का नाम याद रखना। शादी ब्याह है या आम कोई छोटा बर्थडे पार्टी आप या किसी को गिफ्ट देने के लिए, यू मस्ट विजिट रूबी ज्वेलर्स। गोल्ड का ट्रेड है या फिर रिपेयर है, रूबी ज्वेलर्स 7086 एयरपोर्ट रोड, 9056776888।
जी साहब, सोना खरीदना है या बेचना है, हर तौर पे रूबी ज्वेलर्स। मैं बाय द वे आमिर के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। हमारे साथ इकराम भाई भी हमारे साथ हैं। आमिर जो है ना, मतलब बल्कि एक मैंने टिकटॉक बनाया सड़क पे, एक बड़ा प्यारा कपल है, इनको मैं 2 साल से देख रही हूँ। तो मेरे घर के सामने एक दिन आके बैठ गए, तो मैं सॉरी करके परसों उनके दरमियान जाके बैठ गई। बहुत से लोगों ने उसको बहुत सराहा, बहुत से लोगों ने उसको देखा भी, जवानी और लड़कपन। और फिर मैंने तो पूछे, मैंने कहा अच्छा, अगर आपको दोबारा चांस मिले जिंदगी का तो आप इन्हीं से शादी करेंगे? कहते हाँ जी, इन्हीं नाल। मैं क्या, अच्छा रब ने डेके कसुन। तो आमिर की बेगम ने यानी इनके जो दोस्त हैं माजी जमाल जैसे बड़े तीखे तीखे दोस्त हैं, उन्होंने कहा था एक बेगम को ना कभी नहीं करनी, मगर जो काम बेगम कहे करना है उल्टा करना। अगर वो कहे मशीन में कपड़े डालो तो तुम एक दफा पूर खराब कर देना, तुम जो साबन है कम डालना और ब्लीच ज्यादा डाल देना, जब निकलेंगे सारे कपड़े बराबर निकलेंगे दोबारा तुम्हारी बीवी कपड़े धोने का नहीं कहेगी। अच्छा, उसने कहा जब तुम्हारी बीवी बर्तन धोने का कहे तो तुम एक आध बर्तन तोड़ देना या तुम डिश वॉशर के बीच में कोई और गलत चीज डाल देना। तो बस जी ये तो मैं आमिर से कहती कि आमिर इतना अच्छा काम भी ना करोगे फिर उसके बाद मैं कहूँ कि आमिर अब आप मेरे साथ रोज की बोर्डिंग किया करो। आमिर इसलिए बच के रहना।
मैं मैसेज समझ गया।
समझ गए हो? हाँ, अकलमंद के लिए इशारा काफी है। आपको लेके जाना चाहती हूँ मैं रूबी ज्वेलर्स पे, अ वंडरफुल ब्रदर ऑफ माइन दैट इज इन माल्टन, माल्टन गढ़ है। न सिर्फ माल्टन गढ़ है बल्कि अगर आप ब्रैम्पटन में हैं, अगर आप हाईवेज के बिल्कुल करीब रूबी ज्वेलर्स, अगर आप ओकविल में हैं, अगर आप बर्लिंगटन में हैं, नियाग्रा फॉल्स में, आप अल्लाह आपका भला करे एजेक्स में, पिकरिंग में, विडबी में, तो और जेवरात की खरीदारी करनी है तो दिस इज वर्थ, यस इट इज वर्थ ट्रैवलिंग टू माल्टन और रूबी ज्वेलर्स। अगर आप ये समझते हैं कि मैंने जेवर खरीदना है या मैं चूड़ियां पापा के मेरा दिल पार गया है, आपने जेवर बेचना भी है तो आप रूबी ज्वेलर्स को विजिट करें। अच्छा, वहां पे आएंगे ना सारी की सारी टीम, इनकी बड़ी बड़ी कमाल की है, मगर इस वक्त आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम जनाब इकराम साहब से। इकराम भाई अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम भाजी, कैसे हो?
मेरे भाई मैं अभी तक तो ठीक ही हूँ, जिंदा हूँ।
आपने एक बार कहा कि चूड़ियां पाप आ गए, मैं थक गई हूँ।
हाँ नहीं, मैं थक गई हूँ यानी मैं अक गई हूँ।
अक गई हूँ, गोल्ड फिर तुसी चेंज करवा लो, और कुछ कर लो।
जिंदाबाद जिंदाबाद,
कुछ और ले लो।
इकराम भाई हमारी मजबूरी होती है बाजू का, हमें जड़ाऊ जेवरात बड़े अच्छे लगते हैं। जड़ाऊ में जाहिर है लोग, कुछ लोग नौरतन पसंद करते हैं, जिनको होता है कि नौरतन जो है यानी उसमें नौ रंग के रंग लगे होते हैं वो सारे ही कपड़ों के साथ मैच कर जाता है, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं जी मेरा बर्डस्टोन रूबी है, मैंने रूबी के ही पेंडेंट लेना है, या मेरा फिरोजा है, या मेरा जमुरद है, या मेरा जो भी है सैफायर है। तो आप बताइए कि जड़ाऊ जेवरात और पेंडेंट सेट्स में आपके पास क्या वैरायटी? अभी रिसेंटली आपकी एक नई शिपमेंट आई थी, आप थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे अपनी शिपमेंट?
जी जी, मेरे पास है जड़ाऊ में है, सारे नौ रतन में सेट भी है। एक सेट चले है जो बिल्कुल लाइट चेन जैसे सेट आते हैं, उसको बिल्कुल लाइट वेट है, जो दो तोले डेढ़ तोले में पूरा सेट कंप्लीट बनता है, वो भी है। पेंडेंट सेट भी है, थ्री पीस जो राउंड पेंडेंट चेन के साथ, वो भी है। उसमें सारे कलर है, गोल्ड में बहुत अच्छे आए हैं, जस्ट गोल्ड, प्लेन गोल्ड में, स्टोन के बगैर भी है, तो वो भी देख सकते हैं, वो भी आ सकते हैं। और बैंगल के मेरे पास बहुत अच्छे डिजाइन आए हैं।
मेरा आपसे सवाल है कि बहुत से लोग हमारे जो जाहिर है अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट हो जाती है, वो कहते हैं जी आउंस लेना है और जो गवर्नमेंट के यानी सर्टिफाइड आउंसेस हैं उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे?
सर्टिफाइड आउंसेस वो इन्वेस्टमेंट है, वो लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए, और जितनी उनकी सेविंग है उसमें सेविंग को कन्वर्ट कर दें गोल्ड में, वो सही है, उनका सेफ भी हो जाएगा, फ्यूचर में बढ़ेगा भी, उनके काम भी आएगा, फ्यूचर में बच्चों के काम भी आएगा। ये सेविंग तो है, कल को तीन दस साल पंद्रह साल बीस साल पुराना लिया होगा तो बच्चों की जब मैरिज शादी होगी तो उस वक्त तो उनको वो ही लगेगा ना, ये बहुत सस्ता था, इजी बन भी जाएगा, तो उस वक्त आने वाले टाइम में तो गोल्ड ऊपर ही जाएगा।
देखिए बड़ी अजीब सी बात है, अब जब मैं बताऊंगी ये तो बहुत से लोगों का ख्याल होगा आरफा तो 1900 दूर से तल्लुक रखती है। माय एल्डेस्ट सिस्टर इज एल्डेस्ट, शी इज ऑलमोस्ट 18-19 इयर्स ओल्डर देन मी, शी गॉट मैरिड इन 1967-68 में, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। आपको पता है सोने की कीमत क्या थी? 300 रुपए तोला थी, 300 रुपए बाय व्हेन माय एल्डर सिस्टर गॉट मैरिड। उससे पहले
तो आप बात करते हैं 1974 की बात करते हैं।
हाँ तब फिर 167 थी, 167 थी कुछ ऐसे ही अम्मी जान बताया करती होती थी। आज सोना किस तरह तोला है?
आज तो 3250 डॉलर का वन औंस है।
वो ढाई पौने तीन तोले,
ऑलमोस्ट 1100 का तोला है आज, 1100 डॉलर का,
1100 डॉलर का तोला है।
तो पाकिस्तान में जो आप बात कर रहे थे ना 450 रुपए की, 300 रुपए की, वो अभी 2.5 लाख का तोला है।
2.5 लाख का, आप देखिए कहाँ 300 और कहाँ 2.5 लाख, माय गॉड।
मतलब जो भी है ना, मैं तो ये सबको यही कहूंगा कि गोल्ड जब भी लेंगे, महंगा भी लगे तो वो ले लो उसको, ले लो, फ्यूचर में आप कहेंगे कि सही डिसीजन लिया है।
रूबी ज्वेलर्स के पास अगर मैं आती हूँ तो मैं तो कहती हूँ कि भाई इकराम भाई इज वेरी नाइस एंड अ स्वीट ब्रदर ऑफ माइंड, मेरा बड़ा डियर ब्रदर है, पर लिसनर्स को किवें पता लगेगा?
बड़ा औखा सवाल,
क्योंकि मेरे लिसनर मेरे दिलबर जानी ने, मैं जी रही हूँ ना अल्लाह के आसरे तो बाद मेरे लिसनर मेरी हर चीज़।
मुझे इतना पता है कि आप उनको ही रेफर करेंगे, जब आपको पूरा इत्मीनान तसल्ली होगा तो आप रेफर करेंगे, मुझे इतना तो पता है।
मैं जी, आप अगर आप इस वक्त मेरे साथ एयर पे हैं तो आपको क्या पता मेरा कितना कॉन्फिडेंस है आप?
बहुत ज्यादा है भाजी, बहुत ज्यादा,
बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत से ज्यादा,
बिलीव करो बहुत ज्यादा।
रूबी ज्वेलर्स माल्टन में मस्जिद के बिल्कुल वेस्ट साइड पे आपको ये नजर आता है, एयरपोर्ट रोड पे है, नॉर्थ ऑफ डेरी है। बाज़ूकात ये छोटी छोटी चीजें, मैंने इस वक्त भी, मुझे आज दो तीन लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया है, आप बताइए ये छोटी सी झुमकियां चांदी की हालांकि हैं, ये मेरा ख्याल है मुझे 9वीं या 10वीं में मेरी अम्मी ने दी थी, हम खुद तो इस काबिल नहीं थे कि खरीद सके। मेरे पास एक और डंडी झुमकी है जो मुझे 12वीं में दी थी,
डंडी झुमकी बहुत पुराना स्टाइल है,
1900 रूट दा एग्जैक्टली, 1979 में जब मैंने इम्तहान पास किया था तो उसमें मुझे वो दिया, एंड आई स्टिल हैव दोज उस जमाने में।
आज भी बहुत भाजी, आपको पता है अभी नए जो पुराने डिजाइन थे फिर दोबारा नए आ गए हैं, नई डिजाइन।
रूबी ज्वेलर्स पे पहुंची इकराम भाई और इकराम भाई की पूरी टीम आपकी मुलाकात होगी, आपको बहुत ओपन आर्म्स के साथ वेलकम करेंगे। इकराम भाई थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू भाई।
इकराम भाई गाना कौन सा गाते होते हो?
अभी आपने लगा ही देना है।
नहीं, आपने बता देना, मुझे क्या पता कौन सा गाते, मुझे आपकी दिल की खबर तो नहीं है।
अभी आपने लगा देना है मुझे।
अच्छा, आप कौन सा गाना गाते हैं अपनी बेगम के लिए?
तो मैं उनके लिए गाता हूँ, सबके लिए तो नहीं।
अच्छा, आप उनके लिए गाते हैं। आप जो गाते हैं हमें बता दें, हमें भी क्या पता अच्छा लगे, हम भी लगाने।
फिर तो मशहूर, मुझे फिर दूसरा ढूंढना पड़ेगा।
चले चले कोई बात नहीं, आप दूसरा काम भी कराया करो कभी कभी। तो कड़ा गाना गाते हो ना वास्ते?
उन्हें वास्ते ना, सब वास्ते नहीं है ना। बार बार पढ़ दे।
पर कोई गाना दसते दो, सानू भी पता लग जाए।
ये बाजी बहुत अच्छा प्यारा सॉन्ग है। हाँ। वो मैंने छुपा के रखा हुआ है कि
ये भी बहुत प्यारा सॉन्ग है, छुपा के रखा हुआ है अपनी बीवी के लिए।
वेरी नाइस इकराम भाई, वेरी नाइस।
अच्छा, आप उनको गा के सुनाते हैं या उनको पढ़ के सुनाते हैं?
गा के सुनाता हूँ जब कोई पास नहीं होता तो।
आई लव यू, बहुत प्यारे मेरे इकराम भाई, बहुत प्यारी कपल, माशाल्लाह छोटी सी बहुत प्यारी फैमिली। रूबी ज्वेलर्स पे आप तशरीफ लेके जाएं, एंड आई प्रॉमिस के यू विल लव टू बी देयर, और आप अपनी बेहतरीन चॉइस पे अपने आप को दाद देंगे, मुझे भी शाबाश दे देना। थैंक यू इकराम भाई, थैंक यू वेरी मच। इकराम भाई से मुलाकात करें, एक गीत की तरफ लेके जाना चाहती हूँ मैं आपके साथ, शेयर करना चाहती हूँ कि आज इंशाल्लाह अब से तकरीबन 10 मिनट के बाद हम आपको इंडिया लेके चलेंगे। इंडिया से हमारे साथ जस्टिस मार्कंडे होंगे,
جسٹس مارکنڈے کے بارے میں جب میں ذکر کرتی ہوں اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز اس کو مس مت کیجیے گا. جسٹس مارکنڈے ان کے پیرنٹس بلکہ ان کے گرینڈ فادر تھے. پارٹیشن میں جو برٹشرز سے آزادی لی تھی اس جد و جہد میں انہوں نے شامل کیا تھا. جسٹس مارکنڈے جو ہیں یہ 46 میں لکھنؤ میں پیدا ہوتے ہیں. ان کی خاندان میں زیادہ تر وکلا تمام کے تمام کہتا جیسا باپ ویسا بیٹا سارے کے سارے وکیل ابا جی نانا جی دادا جی سارے کے سارے. اس کے بعد ان کی جو شیوا ناٹک کا جو ان کے والد صاحب یہ جج بھی رہے ہیں. انڈین نیشنل کانگریس میں بھی شامل یعنی پالیٹیشین بھی وہ ڈیفینیٹلی تھے. اتر پردیش لیجسلیٹو اسمبلی میں بھی رہے, اتر پردیش لیجسلیٹو کاؤنسل میں بھی رہے. ان کے گرینڈ پا کلیش ناتھ کا جو تھے وہ انڈیپینڈنس میں شامل رہے. اس کے علاوہ ان کے گرینڈ فادر آلسو سروڈ آن دا گورنر آف اوریسا اینڈ ویسٹ بنگال اینڈ چیف منسٹر آف مدھیہ پردیش میں یہ بھی رہے. اچھا ان کے انکل ٹرلے پرلے سارے یا تو وکیل تھے یا پالیٹیشنز تھے. اس کے بعد جسٹس مارکنڈے جو ہیں ان کا جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے بڑی اسٹرانگ تھی. ایون ان کو ایک آنریری ڈاکٹریٹ آف لا بھی دیا گیا ہوتا ہے. اوارڈیڈ ان آنریری ڈاکٹریٹ آف لا بائی دا بنارس ہندو یونیورسٹی کی جانب سے. اچھا اب جب بات کرتے ہیں تو ہندو بنائے طور پہ ہندو بنارس یونیورسٹی سے. آج اگر جسٹس مارکنڈے کی بات کرتے ہیں تو جسٹس مارکنڈے کہتے ہیں کہ یہ ذات پات برادری بالکل نہیں ہونی چاہیے. Isn't it strange? Yes, it is. But that's what he says. میرے پاس ان کا بلکہ ایک آرٹیکل بھی آیا جسٹس مارکنڈے وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جسٹس مارکنڈے وہ ان کے ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ آف دا کاسٹ ریزرویشن یعنی یہ جو ذات برادری کا جو رجحان ہے اس کے وہ خلاف ہیں. اور وہ کہتے ہیں تمام لوگوں کو ایک مٹھی کی طرح سے ایک جگہ پہ مل کے کام کرنا ہوگا. 5:30 بجے 6 بجے ہمارے ساتھ جناب شاذیہ صاحبہ نیوز ان ڈیٹیل پیش کریں گی. مگر 7 to 9 کرکٹ کا بخار جو ہے کرکٹ مینیا آج کل ٹی ٹوینٹی کے حوالے سے. ہاں G20 آ گیا نا جی سر وہ بھی آ رہا
بالکل
نہیں یہ G20 یہ جو بڑے بڑے ملک ہیں یہ G20 ان کی تھی
سیاست ہمارا کوئی تعلق
ٹھیک ہے G7 بھی تھی G20 بھی تھی
کرکٹ ہوتا ہے
یہ T20 اور صاحب یہ جو کرکٹ مینیا ہے اب اپنے اختتام پذیر ہے. ہم شکریہ ادا کرنے چاہتے ہیں اپنے سپانسرز کا مگر آج کے پروگرام کو رونق بخشیں گے کیونکہ انڈیا اور انگلینڈ کی ٹیموں کے بارے میں اور انڈیا کی شاندار فتح کے بارے میں بات ہوگی. ہمارے ساتھ سکندر وقت ہوں گے, ہمارے ساتھ نہیں میری ٹیم کے ممبران ان کے ساتھ سکندر وقت ہوں گے. آپ بھی اس ملاقات میں ضرور شامل ہوئیے گا. اور سکندر وقت آج دیکھیے صاحب بہت ساری چیزوں میں تبدیلی آ گئی ہے. ایک زمانہ تھا ہم کرکٹ کھیلتے تھوکے لگا لگا کے بال رگڑ رگڑ کے چٹے کپڑے اپنے لالو لال کر دیا کرتے تھے اور زبان لگا رہے ہیں تھوک لگا رہے ہیں. میں کہتی تو کڈے گندے کھلاڑی ہوں نے تب سے پھر مجھے کرکٹ دیکھنی نہیں اچھی لگتی تھی. اور میں مظفر علی کو کہتی تھی 5 دن کرکٹ دیکھ دیکھ کے آخر میں کہتے ہو میچ ڈرا ہو گیا. مطلب ایسی کھیل کا کیا فائدہ. اینی ویز تو اب پھر انہوں نے اس کو ظاہر ہر چیز آج کل کمرشل ہے. انہوں نے کرکٹ کو بھی کمرشل کر دیا کہ ایک دن میں 20 overs 50 overs کے ساتھ آئے پھر 20 overs کے ساتھ آئے پھر 10 overs میں یعنی کھڑے کھڑے ہاتھوں آپ کو ریزلٹ مل جاتا ہے کون سی ٹیم اچھی کون سی غلط. تو ایک زمانہ تھا کہ وہ بال کو رگڑ رگڑ کے بیڑا کرک کر دیتا تھا. یہ پینٹ کے پیچھے سے پینٹ کے آگے سے جیبوں کے پاس سے پٹا گول کر دے.
وہ ایجاد تھی. کل سکندر بخش صاحب نے اپنے پروگرام میں انہوں نے بتایا دنیا جو ریورس سوئنگ سے پریشان ہوئی اس کو ایجاد کرنے والے پاکستانی تھے جنہوں نے جو آپ کہہ رہی ہیں نا ایک طرف سے رگڑ رگڑ کے وہ ایک طرف سے رگڑ کے شائن کر لینے کا وہ خاص مقصد تھا ان کا.
اچھا مگر اب اس کو ٹیمپرنگ کہتے ہیں.
اب
اس کو بانڈ ٹیمپرنگ بال ٹیمپرنگ
جا رہی تھی. ہاں انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی لوگوں کو بہت سے.
اچھا اب اس کو بال ٹیمپرنگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی ابھی یہ T20 میں میچز ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا جی وہ اگلے دوسرے تیسرے بالوں کے اوپر ہی بال سوئنگ بیک کر رہی تھی تو انہوں نے کہا جی ٹیمپرنگ کر دیا. حالانکہ ٹیمپرنگ کرتا ہوا نظر بھی نہیں آیا. ٹھیک تو واٹ ایور اٹ از. تو سکندر بخت اور سکندر بخت اپنی یادوں کو شیئر کریں گے. وہ گولڈن پیریڈ گولڈن ایرا آف
क्रिकेट. आज देखिए साहब, आज तक मैं आई बीन लिविंग हियर फॉर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स, कभी भी क्रिकेट की बात नहीं होती थी, मगर रेवोल्यूशन है कि नाउ अमेरिका की क्रिकेट टीम और जिसमें साउथ एशियंस ने बड़ा रोल प्ले किया है. तो सिकंदर बख्त को आप ज्वाइन कीजिएगा 7 बजे 770 पे. आप भी सुनिएगा, अपने दोस्त अहबाब को भी सुनने का जरूर कहिएगा. आमिर, एक गीत हो जाए मेरा ख्याल है, या कुछ चंद एक स्पॉन्सर हो जाए.
मेरे ख्याल से कुछ स्पॉन्सर्स ले लेते हैं पैगाम, और मैं कुछ बता भी देता हूँ कुछ स्पॉन्सर्स का पैगाम. डॉक्टर फयाज कुरैशी साहब हमारे जो हैं वो दांतों के, अगर आपने कोई भी काम कराना है, फैमिली डेंटिस्ट्री, ओरल सर्जरी, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री या सेडेशन डेंटिस्ट्री अगर आपने करानी है, तो हम एक नाम आपको देते हैं, डॉक्टर फयाज कुरैशी. ये 3 लोकेशन से ऑपरेट करते हैं, मिसेस सागा में 2 लोकेशन और एक स्कारब्रो में. मैं आपको मिसेस सागा का नंबर पहले दे देता हूं, 9052325678 9052325678. डॉक्टर फयाज कुरैशी.
अमित, मैं इसको एलैबोरेट थोड़ा सा करना चाहती हूँ. आपने ओरल सर्जरी के बारे में बात की ना, तो बाज़ुकात एज के साथ हमारी बोन्स जो हैं वो ढलती हैं, बाज़ुकात हमारे गम्स नीचे जाते हैं. आपको याद करें जो दांत बड़े छोटे छोटे हुआ करते थे, अभी आमिर के छोटे छोटे दांत नजर आ रहे हैं ना, आज से 20 साल के बाद देखना बड़े बड़े हो जाएंगे, क्योंकि हाँ गम्स पीछे चले जाते हैं ना और बोन्स श्रिंक हो जाती हैं. अच्छा, अब उसमें ये है कि ये जो आपने ओरल सर्जरी कही है, मिसाल के तौर पर आपने दांत निकलवाया तो आपके जबड़े के बीच में गैप आया ना, तो वो वहां पे बोन इम्प्लांट कर देते हैं, हड्डी नहीं डालते. ये ग्राफ्टिंग का एक पाउडर आता है बोन का, वो डाल देते हैं, तो आपका जॉ अपनी ओरिजिनल वो जो गैप आ जाता है वो फिल कर दिया. क्राउन्स हैं, ब्रिजेस हैं, दांत टेढ़े हैं, सीधे करने के लिए डॉक्टर फयाज कुरैशी. दो एक स्पॉन्सर और फिर गेट रेडी, हम आपकी मुलाकात कराएंगे हिंदुस्तान से उनके जस्टिस मारकंडे के साथ.
एशियन फूड सेंटर दी सारिया ही लोकेशंस ते 27 जून तो 7 जुलाई तक लग चुकी है कनाडा डे सेल. वी पौंड स्वर्णा होल वीट आटा 10.99, 2 पौंड वाग बकरी टी 9.99, 10 पौंड इंडिया गेट रोजाना राइस 11.99, नानक देसी घ्यो 25.99, 341 ग्राम नानक पनीर 4.99. एशियन फूड सेंटर दी सारिया ही लोकेशंस ते तुसी ताजे फल फ्रूट सब्जियां भांडे अते मिठाइयां भी ले सकदे हो. एशियन फूड सेंटर, कॉल कर लो 416-740-3262.
इन्ना सोना कर लिया हुन अपलायंसेस भी स्टेनलेस स्टील दे ही चाहिए.
हाँ जी, स्टेनलेस स्टील दे अपलायंसेस मिलेंगे तानू ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस ते, जिसे फ्रिज, स्टोव, डिशवॉशर, 3 पीस किचन बंडल, इसके अलावा फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर, एनर्जी सेवर, एनर्जी स्टार, ते टीवी सेक्शन एच सोनी, सैमसंग, पैनासोनिक, शार्प, हर साइज से हर ब्रांड का टीवी विद द लोएस्ट प्राइसेस इन द टाउन, सिर्फ ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस ते. ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस 801 Bowie Drive West, Brampton. Ya call karo 905-450-2828-905-450-2828.
क्या आप या आपकी फैमिली डेथ, डिसेबिलिटी या क्रिटिकल इलनेस जैसी नागहानी सूरत हाल के लिए तैयार है? अगर नहीं तो सन लाइफ के प्रदीप जी का नाम याद रखिएगा 416-894-5872.
जी हाँ, सलाह मशवरे और किसी भी पॉलिसी के रिव्यू में मैं प्रदीप सिंह आपकी पूरी मदद करूँगा.
ट्रस्ट विल बी ऑन एस चार्टर्ड लाइफ अंडर राइटर एंड कैनेडियन हेल्थ स्पेशलिस्ट मिस्टर प्रदीप फ्रॉम सन लाइफ 416-894-5872.
और हर ट्यूजडे को मेरे टॉक शो में जरूर शामिल हों.
अब पाकिस्तान पैसे भेजना हो गया बिल्कुल आसान. पाकिस्तान पैसे भेजें ईमेल मनी ट्रांसफर से और हासिल करें पूरे पाकिस्तान के किसी भी बैंक अकाउंट में, या कैश रकम हासिल करें एमसीबी के 1100 से ज्यादा ब्रांचेस से सिर्फ चंद घंटों में. गोंदल ब्रदर्स, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा और फिनट्रैक से रजिस्टर्ड इदारा. आपकी रकम रहे बिल्कुल महफूज. गोंदल ब्रदर्स डॉट कॉम और 9053060000. सेंड मनी फ्रॉम होम टू होमलैंड. गोंदल ब्रदर्स.
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज नासर शाह. आपको पता है पिछले 20 सालों से हम मॉर्गेजेस कर रहे हैं, लोन्स कर रहे हैं और कमर्शियल मॉर्गेजेस कर रहे हैं. अगर आपको किसी तरह की मॉर्गेज चाहिए तो गारंटी आपको बेस्ट रेट ऑफर करेंगे और साथ साथ जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनका भी बड़ा ध्यान रखते हैं. और कमर्शियल मॉर्गेज कभी भी आपको चाहिए किसी तरह की, होटल, मोटल, गैस स्टेशन या कोई फ्रेंचाइज लेनी या किसी प्लाजे में कोई यूनिट बाय करना, तो उसके लिए भी हमें कॉल करें. और अगर आपको बिजनेस लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए तो उसके लिए भी हमें कॉल करें 647-741-9000.
आयशा, ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो?
घर में मेहमान आ रहे हैं,
और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए।
10 जगह क्यों, एक ही जगह है फातिमा ग्रोसर्स।
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी। ग्रोसरी का सारा सामान सासो आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी। मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड, वेस्ट ऑफ मिसिसागा, 9058487000। फातिमा ग्रोसर्स, सबसे जबरदस्त।
चांदनी
बैंक्वेट हॉल,
इंटेलिजेंट चॉइस लोकेशंस, साउंड सिस्टम इनोवेशंस, चांदनी बैंक्वेट हॉल,
30 इयर्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस, कॉर्पोरेट इवेंट, एग्जीबिशन, एक्सपो और एनी सेलिब्रेशन।
सारे पैकेज का नाम चांदनी बैंक्वेट हॉल, आज ही कॉल कीजिए 4372188734, chandnihalls.ca।
जी सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हमारे पास मुजफ्फर टुडे, आई हैव अ वंडरफुल पर्सन, अ ग्रेट पर्सन विद मी, एंड ही नोज सब कॉन्टिनेंट वेरी वेल। ही इज जस्टिस मार्कंडे, एन इंडियन ज्यूरिस्ट एंड द फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हु वर्क्ड एज अ चेयरमैन फॉर द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रॉम 2011 to 2014। ये एक पॉलिटिशियन, उनके बेटे हैं, ग्रैंडसन ऑफ कैलाश नाथ काजू, उनके बेटे हैं, फाउंडर एंड पैट्रन ऑफ द इंडियन रीयूनिफिकेशन एसोसिएशन। यानी मकसद, द ओनली रीजन व्हाट ही इज टू रीयूनिफाई ऑल द पीपल ऑफ ईस्ट टू शो देयर स्ट्रेंथ एंड कम टुगेदर। हाउ दिस रीयूनिफिकेशन बी डन विद यू? Thank you very much for joining me, sir.
See, this world is actually two worlds. It is not one world. On this earth, there exist two worlds. One is the world of the developed countries, which means North American countries, European countries, Japan, Australia, New Zealand, and even China has joined their ranks now. The other world is the world of the underdeveloped countries, which include India, Pakistan, Bangladesh, other Asian countries, African countries, Latin American countries, etc. Now there is a very strong but very secret rule among the developed countries that underdeveloped countries must not be allowed to become developed countries. Why? Why is there this rule? Now to explain this, I have to go into economics, because politics is concentrated economics. You will not be able to understand politics unless you understand economics. You see, cost of labor is a big chunk of the total cost of production. And if the cost of labor is less, then the cost of production is less. And if the cost of production is less, you can sell your goods at a much cheaper price and undersell your business rival. There's competition in the market. One businessman eliminates another businessman, not with guns or bombs or tanks, but by underselling him, which means selling the same high quality goods at a much cheaper price. To give an example, China had a revolution in 1949. Before that, China was a very poor country. 90-95% people of them were poor serfs. You know, almost landless liberal, and a very backward country. But after 1949, the Chinese leaders who came to power rapidly industrialized China and built up a massive industrial base in China, which is still developing. Now that massive industrial base, coupled with the cheap labor in China, enabled the Chinese to undersell the whole world, particularly in consumer goods. If you go to American supermarkets, you will find they are packed with Chinese goods, because the Chinese sell the same high quality goods which the American manufacturer can sell, but at half the price, because the labor is cheap. Western labor is very expensive. So what I'm trying to say is that countries which have cheap labor have a distinct advantage over countries with expensive labor, provided they set up a massive industrial base. Now, if India and Pakistan set up a massive industrial base, with their cheap labor, they will undersell the American and European industries, which will collapse because they won't be able to face the competition, because we will be selling goods at half the price, the same high quality goods at half the price. Who will buy the goods of Americans and Europeans? The industries will collapse, throwing millions of Americans and Europeans out of employment. Will they permit that? No, they will oppose it tooth and nail. So how do they oppose it tooth and nail? They oppose it tooth and nail by making Hindus and Muslims fight each other, by making people fight each other in the name of caste or language or some other ethnic basis or something like that. You see, the whole game which is going on in the world today is that the developed countries are making underdeveloped countries people fight each other in the name of religion, caste, language, etc. This Narendra Modi, Prime Minister of India, he's nothing but an American agent. His job is to make Hindus and Muslims fight each other. And in fact, partition of 1947, which I regard as a British swindle, because really India and Pakistan are one country. We share the same culture. We were one for 500 years or more, and we look like each other. We speak Hindustani many of us. So this partition was also done for the same reason that Hindus and Muslims must be made to fight each other, so that the Indian subcontinent does not emerge as a modern industrial giant like another USA or China, of which we have all the potential. We have got thousands of very bright engineers. We have got huge natural resources. Within 20 years, we can transform our Indian subcontinent into a modern industrial giant. But if we do so, then the industries of the developed countries will collapse. You understand? Please understand, this is a very secret rule which they have among the developed countries there. They will never talk about it. But it's a very, very strong rule that underdeveloped countries must not be allowed to become developed countries. Now the interest of the developed countries directly conflicts with the interest of the underdeveloped countries. Developed countries will not allow us to become developed countries, because then we'll have cheap labor and we set up a massive industrial base. The industry will collapse and millions will be thrown out of employment. On the other hand, on our part, we must become developed countries. Because unless we set up a massive industrial base and become a mighty industrial giant, we will never be able to abolish poverty or unemployment or hunger or lack of healthcare, lack of good education, etc. So our interests directly conflict each other. Now, how is this contradiction to be solved? In my opinion, it can only be solved by mighty historical people's struggles and a people's revolution. It can't be solved peacefully, just like China solved their problem. We have to launch massive people's, united people of all religion communities must come together and launch mighty people's struggles, and thereafter a mighty revolution led by modern-minded leaders who are determined to make their country highly industrialized, who are patriotic, selfless, and the struggle will last for a long time. It's going to be maybe 10, 15 years. It's going to be a protective struggle. And tremendous sacrifices will have to be made, because the developed countries will not easily allow this transformation to take place. You understand? Because they will feel threatened that their industry will collapse if India, the Indian subcontinent, is transformed into a mighty industrial giant. This is the basic thing which is happening in the world today. You people don't know this, and you talk left and right, this and that, any nonsense. I'm telling you the secret. This is the main thing, that our Indian subcontinent must be transformed into a modern industrial giant, which can only be done by a people's struggle and a people's revolution.
So thank you very kindly. You gave detailed information. So this is basically divide and rule and use the politician and people in the power. That's
exactly.
Right? Okay. Now I would like to request you for the solution for this. What is the solution?
A mighty people's struggle and a people's revolution. It can't be done peacefully. because they are powerful forces. These developed countries are very powerful. They will not easily allow our transformation into a modern industrial giant, because they feel that if that is done, their industry will collapse. They can't face the competition. We sell goods at half or one third the price at which they sell their goods. Will they allow this easily? You must understand this. They will fight it tooth and nail. And they are doing it. What is Narendra Modi? He was just brought in to spread hatred against Muslims. That was the main purpose, to divide India. Similarly, other politicians in India, they operate on caste basis, many parties and other on ethnic basis and all. The whole game is that make Indians fight each other in the name of religion, caste and so on. And same in Pakistan also. But one thing I must tell you, that India is the most developed among the underdeveloped countries. Underdeveloped countries, but India is the most developed among the underdeveloped countries. So India is going to give the lead in this process.
Sarah, you explained it very well, but my concern at the moment is, in India you explained it, and so this means all the politicians in this area, they're working for the developed countries,
exactly,
not to come all, at the same time.
They're all foreign agents, all political parties are objectively, I'm not saying subjectively, but objectively they are agents of some foreign powers.
In America, there are the political differences. There was a debate between President Biden and ex-President Donald Trump. When you look at in France, they called for the election. When you look at in England, they called for the election. So these developed countries, inside their own countries, there are so many rifts. But why? Underdeveloped countries are not understanding. They cannot rule in their own countries. They don't have harmony in their own country, and they are not letting underdeveloped countries to develop.
There is basically no difference between Republican or Democrat. Both represent the big business class in USA. Similarly, there is no difference between the Conservative and the Labour in UK, because both represent the big business class in UK. So there are no real differences. Whether Republican comes to power or Democrat come to power, it will be big business of USA which will be in power. So then this difference is just superficial. But on this, they are determined that underdeveloped countries must not be allowed to become developed countries. For the reason that then their industries will collapse, because we have cheap labor. Always keep it in mind that everything turns on the cost of labor once you develop a massive industrial base. A country which has cheap labor has a distinct advantage over a country which has expensive labor. Now, US labor is very expensive. Therefore, their goods are very costly. And we have very competent engineers now in India and Pakistan. We can produce the same high quality goods at one third or one half the price. Then who will buy their goods? The industry will collapse, throwing millions out of employment.
Now I definitely focus on on Pakistan as well, because it is said that Pakistan is a deep state, and Hillary Clinton explained it, that it is difficult for us to deal with the different politicians, so we want to deal with the army. This is not me, this is what Hillary Clinton explained. So do you think they will never let these leaders to wake up and work for the betterment of subcontinent to rule the world? How these politicians can be waken up to take a step and unite together to beat the West?
Listen, first you must understand who really rules Pakistan. It is the Americans who rule Pakistan. The Pakistan army obeys the orders of the US government. Whatever US government tells them to do, they will do. For example, almost all these army generals, General Muni and corps commanders and all, all of them have been bribed by the Americans in this way, that their sons have been given jobs in World Bank or IMF, paying very, very huge salaries, or given admission on full scholarship in Harvard or Yale or something. In this way, all these army generals of Pakistan have been bribed over. Bribing can mean many different ways. And they have huge bank balances in US banks. So they are all pro-American. Whatever the Americans tell the army generals to do, they will do. So please understand, I don't regard the Pakistan army as such a big danger, as because they are really controlled by the US. Please get your concept clear. It is the US which controls the Pakistan army. You remember, they put Bhutto to death because Bhutto was not agreeable to stop purchasing nuclear fuel from France, and he was tilting towards China and Russia. And Kissinger came and gave a warning to Bhutto that there will be dire consequences, but he did not listen. So they told General Zia to hang, and General Zia obeyed his order. So it is the US which controls the Pakistan army. US is angry with Imran Khan because Imran Khan gave many statements against the US. He said that the US made us send our troops to Afghanistan where many soldiers were killed and we have become slaves. And then he went to Moscow and met President Putin when the Ukraine war was going on. All this has made the Americans very angry with Imran Khan. But, you know, I have said something, I wonder whether you got my article, in which I wrote that Pakistanis in US and Canada have been protesting against the detention of Imran Khan, but to no avail. And the reason for that is that there are only 630,000 Pakistanis in US, whereas there are 5 million Indians in US. And I have suggested that Pakistanis in US should join hands and form a united organization with the Indians in US. Then they will be 10 times more powerful than what they are at present. And then their voice will be more effective. Delegation of them, this joint organization, should go and meet the US authorities and tell them that, look, it is in your interest that there is peace and law and order in Pakistan. Because there are huge US investments of US firms in Pakistan. They will all be endangered if there is a breakdown of law and order. And law and order can only come after a free and fair elections. This last election of 8th February was, you know, rigged massively. There should be another election which should be free and fair. And then I'm sure Imran Khan will win 80-90% of the seats, because as I have understood, 80-90% Pakistanis support Imran Khan, and he should be allowed to become Prime Minister. Of course, he has made statements against US, but then I'm sure a cooler atmosphere talks can be held between US authorities and Imran Khan, and he will, and some deal can be struck, because after all, Imran Khan is not anti-West. He has lived much of his life in the West. He understands the West. And it is not that he is inherently anti-US. So some kind of deal can be struck with him, and a free and fair election can be held. And then he will come to power, and then there will be peace and law and order in Pakistan. I see no other way. Otherwise, there is bound to be guerrilla war or some kind of civil war in Pakistan, which will hurt American interests. This should be explained by the representatives of this joint Indo-Pak organization in America to the US authorities, and I'm sure they will understand that it is in their interest that there is peace and law and order in Pakistan. Thank you.
Thank you very kindly, sir. My last question is, the West would not allow power to be shifted towards China and towards the subcontinent. How do you see ultimately that the dollar is not as powerful because they are using China, Russia, India, and all these countries are using their own currency for exchange. And what happened, what is going to happen, because Middle East is also shifted towards Russia and China. How do you look at it, and what do you see if things go on this way? Where do you see world in next 10 years and power in next 10 years?
I don't agree that Middle East has shifted to Russia and China. Almost all Middle Eastern countries are pro-American. Saudi Arabia is pro-American. All these UAE and other, most of these countries, except perhaps Syria may not be, but most of the countries are pro-American. So I don't agree with this premise of yours. And in other countries also, US has tremendous influence. There's no doubt it is the biggest superpower in the world. So it is not that their influence has gone down. Yes, a little bit shift may have taken place because China has grown. But still, USA commands predominance in these areas.
It's a great message by a jurist and the former judge for the Supreme Court of India, Janab Justice Markande. It's a great just to defeat those who want to rule all the people from India, Pakistan and subcontinent, Bangladesh, around the world should make united effort and make united organization so we can live as big brothers, young brother, but we have to work together to make this area stronger. And I wish the politicians should be, you know, unko politicians ko aap dekhenge wo kiske liye kaam kar rahe hain. Sir, thank you very much.
Thank you.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
गवर्नमेंट ग्रांट्स फॉर फैमिलीज विद किड्स. अगर आपकी इनकम $60,000 से कम है और आपके बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से 12,000 से लेकर 60,000 तक की ग्रांट मिल सकती है और ये फंड 3 हफ्ते में ट्रांसफर हो जाएंगे. ये गवर्नमेंट ग्रांट ऑन्टेरियो, अल्बर्टा और बीसी प्रोविंस के लिए है. मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए शावेज 6477690241.
कैनेडा डे का जश्न मनाओ ब्रैम्पटन दे विच अते एक वड्डे इन्फ्लेटिव जोन विच करो उछल कुद अते एंजॉय करो फैमिली फ्रेंडली एक्टिविटी ते फ्री कॉन्सर्ट होस्टेड बाय जेसी जॉन अते इथे आ रहे ने पंजाबी हिप हॉप आर्टिस्ट इक्की अते इंटरनेशनल श्रीलंकन रैपर MIA. आखिर विच एंजॉय करो रात नु एक वड्डा फायरवर्क जो कि टिम होटन द्वारा ऑर्गेनाइज कीता जाएगा. वधेरे जानकारी लई अज ही विजिट करो brampton.ca/CanadaDay.
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन. आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे. ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक ल्यू थ्रू आउट ऑन्टेरियो. नो अपॉइंटमेंट नीडेड. ड्राइव थ्रू फैसिलिटी. वन स्टॉप शॉप. अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी. क्विक ट्रक ल्यू 519-622-0660. quicktruckcube.com.
अल हुदा इंस्टीट्यूट कनाडा पेश करते हैं वेस्टर्न कनाडा टूर 2024 विद डॉक्टर फरत हाशमी एंड डॉक्टर इदरीस जुबैर. ये टूर 29th ऑफ जून सैटरडे के दिन कैलगरी से शुरू होगा और 14 जुलाई संडे के दिन सरे वैंकूवर पर खत्म होगा. इस टूर की मुकम्मल मालूमात के लिए कॉल 6473884595. क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेक एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए. आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं. राजा मुदस्सिर 6472903773. ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में हैं. टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई.
ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ
ਬੋਡੀ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਜੱਚਦਾ।
ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਫਿਰ ਬਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਮੈਟ੍ਰੇਸਿਸ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮਸ, ਗੱਲ ਕੀਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਨੋ ਵਿਆਜ।
142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 9058747171।
ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ, ਕਰਾਂਦੇ ਹੋ ਮਾਲਕੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਾਰਡ 1, 3, 4, 5, 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਤੋਂ 4 ਰੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ ਨੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਕਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਸਤੇ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਫੀ ਉੱਤੇ ਛੂਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਸਿਡਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਸਮਝਦਾਰ ਕਾਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ brampton.ca/rrl।
ਓਏ, ਇੱਕ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈਏ, ਪੂਰੀ ਮਸਤੀ, ਮਜ਼ੇ, ਨੱਚਣਾ ਗਾਉਣਾ ਹੋ ਜਾਏ।
ਇਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਟੋਲਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਓ ਤਿਆਰੀ, ਰੋਜਰਸ ਮੋਬਾਈਲ ਕਸਟਮਰ ਬਣੋ, ਫਿਰ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਜਰਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਕਾਨਸਰਟ ਦੀਆਂ 2 ਟਿਕਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਾਓ। ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਸਵਿਚ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਰੋਜਰਸ ਗਿਵ ਅਵੇ / ਦਿਲਜੀਤ ਤੇ ਜਾਓ।
770 AM ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਸੁਣਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਤੋਂ ਬਾਖਬਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਨਾਲਿਸਿਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਪ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ eawaz.com, ਲੋਕਲ ਨੰਬਰ
6478724900।
ਚਾਂਦਨੀ
ਚਾਂਦਨੀ
ਚਾਂਦਨੀ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ,
ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਚੋਇਸ, ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ, sound system innovations, Chandni Banquet Hall,
30 years of hospitality experience, corporate event, exhibition, expo or any celebration.
Sare package ka naam Chandni Banquet Hall, aaj hi call kijiye 4372188734, chandnihalls.ca। ویلکم بیک تمام سامعین کو 770 AM ڈائل پر جو سن رہے ہیں ہمیں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر احمد اور ای آواز ٹی وی پر آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ جناب 6 بجنے کے قریب آ گئے، ہم نے کہا کہ ارلی ٹاپ آف دی آور لے لیں اور خبروں کو سلسلہ شروع کریں۔ پھر آپ کو پتا ہے 7 بجے جناب سکندر بخش صاحب، شکو بھائی، آپ کو پتا ہے
شکو نہیں سکو،
سکو سکو بھائی،
سکو بھائی،
سکو بھائی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے 7 سے لے کر 8 بجے تک، اور ہمارا یہ سیگمنٹ ویسے 9 بجے تک رہے گا، تو آپ ہمیں پھر کال بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر 416-620-1778 416-620-1778 ہمارا نمبر ہے۔ تو پروگرام کو آگے بڑھا لیں، وہ کیا کہتے ہیں خاتون جو ہیں وہ آ گئی ہیں ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں، اور کیا کہتے ہیں شامل کر لیں ان کو، نہیں اوفو نیوز سننی ہے، چلیں جناب میں سنا دیتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ کانگریس نے جو ہے امریکن کانگریس، نہیں امریکن کانگریس والی نہیں سنی، اچھا میں بتا دوں کل، ہاں نیوز یاد آ گئی، دیکھو کل فائنل ہے انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کا، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے دن کہا تھا کہ فائنل انڈیا ضرور کھیلے گا، اس پہ تصدیق ہیوسٹن سے ہماری پیاری لسنرز اور ویورز نورین صاحبہ، انہوں نے ہیوسٹن سے کال کی مجھے اور انہوں نے کہا کہ عامر بھائی یو ور رائٹ، ٹھیک ہو گیا بات ختم، لاک ویٹو ہو گیا۔ چلیں جی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اس پروگرام کو نیوز کے سیگمنٹ کو ہمارے ساتھ شامل ہونے جا رہی ہیں شازیہ ملک، تھک گیا۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
عامر صاحب آپ رانگ پروفیشن میں ہو، آپ نوٹنکی کرو جا کے، آپ کا پروفیشن نوٹنکی ہونا چاہیے۔
کیا بات کر،
کیونکہ جتنی پیاری نوٹنکی آپ کرتے ہو نا،
ہاں ہاں،
دنیا میں کوئی کر نہیں سکتا ہے۔ तो आपको कल जो उन्होंने फोन किया था ना, उस पर उन्होंने कहा था मुझे इस बात पे शक नहीं है कि आप खूबसूरत आदमी हो, उस बात पे नहीं कि आपने कहा था इंडिया फाइनल खेलेगा। तो पायल, अगर आपको कल की बात याद नहीं है तो आपको परसों की या एक महीना पहले की कैसे याद होगी? है,
उन्होंने कॉल तो की थी ना?
हाँ, कॉल की थी
उन्होंने, मेरी तारीफ भी,
उन्होंने आपकी तारीफ की, उन्होंने कहा वाकई आप खूबसूरत आदमी हो।
देखें भाई बात, अब आप देखें ना, पंगा लेने में आपको बड़े मजे आते। दुनिया की कोई भी खूबसूरत औरत गलत नहीं बोलती, दुनिया का कोई भी खूबसूरत आदमी
झूठ नहीं बोलता। बस ठीक है आमिर, ये तुम्हारे गोल्डन रूल्स हैं और हम बिल्कुल इसको मान गए, हमने हार
को मानना पड़ेगा।
हाँ।
वरना नौरीन साहब फिर फोन कर रही है, वो अभी देख रही है।
हाँ।
ह्यूस्टन से।
हाँ,
पर्सनैलिटी उनकी।
वही बात ये है, जो हमारे माई बाप हैं उनके मुल्क से वो बात कर रही है, हम उनको कैसे जुटला सकते हैं?
इसीलिए
अगर उन्होंने कह दिया आमिर खूबसूरत आदमी है तो आमिर है,
नॉट खूबसूरत।
हाँ,
उन्होंने कहा कि आमिर ने कहा था कि इंडिया पहुंचे।
जी नहीं, ये नहीं उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा कि आमिर ठीक कहता है, क्योंकि उससे पहले एक कॉल आई थी कि आप अपने आप को किस तरफ से खूबसूरत समझते हो, तो फिर उनकी कॉल आई ह्यूस्टन से और उन्होंने कहा नहीं आमिर सही कहता है, वो वाकई।